हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सिद्धार्थ, जो कभी मूवी नहीं देखता था, सोच में पड़ गया। वो कभी इंग्लिश शो वगैरह ही देखा करता था। तब झलक बोली, आप अपनी पसंद से लगा लीजिए, कुछ भी चलेगा। फिर आंखें बंद करके बोली, जब भी मैं आंखें खोलूं, कुछ अच्छी चीज चला देना प्लीज, जिससे मेरा मन खुश हो जाए। झलक की इतनी एक्टिंग देखकर सिद्धार्थ पूरी तरह हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, कोई इंसान हॉस्पिटल पर भी इस तरह से एंटरटेनमेंट कैसे ढूंढ सकता है। फिलहाल उसने झलक को कुछ नहीं कहा और जल्दी से अपनी पसंद की इंग्लिश मूवी चला दी। झलक ने मूवी शुरू होते ही घूरते हुए बोला, मिस्टर खुराना, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपने जैसी ही कोई चीज लगाएंगे। अब जो मैं कह रही हूँ वही टाइप की कीजिए। मुझे धाकड़ छोरा मूवी देखनी है, आप भी लगा दो। अब ये सुनकर सिद्धार्थ पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। धाकड़ छोरा, ये क्या है? लेकिन झलक उसका नाम लेते हुए पूरी तरह एक्साइटेड थी। तब सिद्धार्थ हैरानी से बोला, तुम एक बार फिर से रिपीट करोगी? तुम क्या बोल रही हो? झलक जल्दी से चाहत भरी आवाज में बोली, इतना तो सिंपल सा नाम बताया है मैंने आपको, धाकड़ छोरा। प्लीज आप वो मूवी लगा दीजिए। आपको पता है, जब वो मूवी पहली बार रिलीज हुई थी, मैंने अपने गांव में पूरे 51 बार वो मूवी देखी थी। मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई थी। और आपको पता है, मेरा आज फिर वही देखने का मन कर रहा है। अब सिद्धार्थ पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। आखिरकार ऐसी कौन सी मूवी थी जिसे इस लड़की ने पूरे 51 बार भी देख लिया और अब फिर से देखना चाहती है? कहीं ना कहीं सिद्धार्थ मन ही मन थोड़ा सा एक्साइटेड भी था ये देखने के लिए कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे इस लड़की ने इतनी बार देखा। सिद्धार्थ जल्दी से गूगल सर्च करने लगा। इस बार वो झलक से इंस्ट्रक्शन ले रहा था, स्पेलिंग पूछ रहा था और टॉप मूवी की लिस्ट देख रहा था। जब उसने इंडियन मूवीज सर्च किया तो कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला। वो हैरानी से झलक की ओर देखने लगा। झलक बोली, आप एक काम करो, देहाती वर्ल्ड की धाकड़ छोरा मूवी सर्च करो। सिद्धार्थ जैसे ही सर्च करने लगा, धाकड़ छोरा टॉप पर आ गई। झलक बोली, वो रही, वो लगाइए। जल्दी से उसने मूवी चलाई। जैसे ही मूवी शुरू हुई और उसमें लोगों की बातचीत और देहाती जैसी भाषा सुनाई दी, सिद्धार्थ का दिमाग चक्कर खाने को तैयार हो गया। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो आगे बढ़कर इस लड़की का गला दबा दे कि आखिरकार ये लड़की किस तरह की मूवी देख रही है। लेकिन झलक पूरी चटकारे लेकर मूवी देखने लगी। अब तो सिद्धार्थ का दिमाग पूरी तरह से चक्कर खाने वाला था। ना तो उसे भाषा समझ में आ रही है, ना एक्टिंग, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सिद्धार्थ सिर्फ झलक के चेहरे को देख रहा था। झलक का चेहरा मूवी देखने के बाद खिल उठा था। ये बात उसे अंदर ही अंदर थोड़ा सा सुकून दे गई। झलक, जो काफी एक्साइटमेंट में थी, अब इतनी ताकत नहीं थी कि ज्यादा देर बैठकर मूवी देख सके। देखते देखते उसने अपना सिर सिद्धार्थ के कंधे पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। सिद्धार्थ झलक को करीब देखकर भावनाओं से भर गया। उसका दिल चाहता था कि वो झलक को अपने सीने से लगा ले। झलक का इतना करीब होना उसे अलग ही लेवल का सुकून दे रहा था। लेकिन ना तो वो अपने सुकून को समझ पा रहा था, न ही अपने दिल की बात। एक अजीब सी फीलिंग उसके दिल व दिमाग में थी, जिससे वो अंदर ही अंदर लड़ रहा था। फिलहाल झलक ने खुद को बिल्कुल भी दूर नहीं किया। उल्टा धीरे धीरे दोनों एक ही बेड पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। नींद में ही सिद्धार्थ ने झलक को अपने चौड़े सीने में छुपा लिया और झलक भी सुकून की नींद में सो गई। अगली सुबह सबसे पहले सिद्धार्थ की आंखें खुलीं। उसने खुद को पूरी तरह दबा हुआ पाया और हक्का बक्का रह गया। झलक ने एक टांग सिद्धार्थ के पेट पर रखी थी और हाथों से उसके चेस्ट को पूरी तरह जकड़ रखा था। सिद्धार्थ ने खुद से सोचा, क्या इस लड़की को तमीज से सोना नहीं आता? पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी और कब नहीं। जब देखो हमेशा चिपकती रहती है, सिद्धार्थ इरिटेट होते हुए बोला। इस बीच झलक की भी आंखें खुल गईं। जैसे ही उसने खुद को सिद्धार्थ के करीब पाया, वो तुरंत खुद से दूर हुई और बोली, आप यहीं सो गए थे रात को? क्या आप मुझे जगा नहीं सकते थे? आपको क्या जरूरत थी कि मेरे साथ हॉस्पिटल बेड पर सोने की? इससे मेरी चोट भी दुख सकती थी और मुझे तकलीफ भी हो सकती थी। सारा ब्लेम झलक ने सुबह सिद्धार्थ पर डाल दिया। सिद्धार्थ बिना किसी इमोशन के उसकी ओर देखता रहा, मन ही मन सोच रहा था, कितनी चालाक है ये लड़की, जब उसकी खुद की गलती होती है तब भी सारा ब्लेम मुझ पर डाल देती है। फिलहाल उसने झलक को कुछ नहीं कहा और उसकी खाली पेट दवाई दे दी और उसने कहा कि तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन झलक तुरंत उठकर फिर अपनी अंगूठी देखने लगी और सोचने लगी, बस जल्दी से शहर वापस जाऊं, वहां जाकर ये अंगूठी बेच दूं, ढेर सारा पैसा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही ख्याल बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। जब सुबह उठकर सिद्धार्थ ने एक बार फिर झलक को अंगूठी के साथ देखा तो उसका खून उबल उठा, पर फिलहाल वो कुछ भी कह नहीं सका। पर ऐसा नहीं कि उसकी भावना कम थी, बस अभी किसी बहाने की जरूरत थी। इसी तरह एक हफ्ते तक सिद्धार्थ ने झलक का खूब ख्याल रखा। झलक उसके लाए हुए खाने में कई कमियां निकालती, नाक मुंह बनाकर खाना ठुकरा दिया करती, फिर भी सिद्धार्थ ने एक बार भी उसे टोका नहीं और न ही उसने झलक को ये महसूस करवाया कि उसे इन बातों से फर्क पड़ता है। बीच बीच में आर्यन कॉल करके हालचाल पूछता रहा, पर सिद्धार्थ जल्दी से फोन काट देता था। वो आर्यन को झलक से ज्यादा बातें करने भी नहीं देता था। आर्यन यही सोचता रहा कि शायद झलक अभी बहुत कमजोर है, बीमार है, इसलिए ठीक तरह बात नहीं कर पा रही। बस किसी तरह झलक के लौट आने का इंतजार करता रहा। वहीं रायचंद परिवार इस वक्त बेसब्री से सिद्धार्थ के आने का इंतजार कर रहा था। धीरज ने वादा किया था कि वो खुराना परिवार से बात करेगा, शायद सिद्धार्थ और आकांक्षा के एंगेजमेंट को तोड़ने की कोशिश करेगा और फिर अपनी बेटी की सगाई करवाने की राह बनाएगा। उसकी मंशा बस अपनी बेटी को खुश देखना थी। आकांक्षा अब बेचैनी से भरी हुई थी। बाहर से वो शांत और शालीन दिखती थी, पर अकेले में अपना फ्रस्ट्रेशन नौकरों पर उतारती। जब से सिद्धार्थ गया था उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। सिद्धार्थ पूरी तरह झलक के साथ बिजी रहा और ये सोचकर आकांक्षा का गुस्सा बढ़ता गया। उसे लगता था कि अब झलक और सिद्धार्थ का कुछ नहीं होगा, पर ये याद आते ही कि कभी झलक सिद्धार्थ के बच्चे की माँ बनने वाली थी, भला वो ये आसानी से कैसे भूल सकती थी। इस वक्त वो अपने पिता के सामने खड़ी होकर बोली, पिताजी आप कुछ भी कीजिए, पर झलक का नाम मेरी जिंदगी से मिटा दीजिए। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुराना परिवार ने उसे अगर गोद ले लिया है तो शादी के बाद तो मैं उसे सहन नहीं करूंगी। शादी से पहले ही उसे ठिकाना लगाइए, मार दीजिए, अगवा कराइए या कुछ भी कराइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आकांक्षा की इतनी नफरत देखकर नैना और ईशान एक दूसरे को देखने लगे। वे लोग झलक को भले ही पसंद न करते थे, भले ही एक समय वे उसे बीच सड़क पर छोड़ आए थे, पर अब झलक बड़ी होकर आकांक्षा जैसी या ये कहें आकांक्षा से ज्यादा खूबसूरत लगती थी। लेकिन क्या वे उसे मार सकते थे? नैना आगे बढ़कर आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटा शांत हो जाओ, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे भरोसा है वो लड़की खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। वो स्वाभिमानी है, खुराना परिवार के साथ शायद वो ज्यादा दिन टिक न पाएगी। नैना की बात सुनकर आकांक्षा ने बड़ी बड़ी आंखें खोली और गुस्से में बोली, अगर वो मेरी राह में आई या मेरे सिद्धार्थ को उसने मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं खुद ही उसका गला घोंट दूंगी, जेल भी जाना पड़े तो जाऊंगी।
ये कहकर आकांक्षा सीधे अपने कमरे में चली गई। ईशान और नैना गहरे विचार में डूब गए। वे अपनी बेटी को इतना दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने ठान लिया कि कुछ करना होगा। झलक के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, क्योंकि पहले की कोशिशें बेअसर रही थीं और झलक अब किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं थी।